اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جب تمہیں اپنے رب کا یقین آئے گا. اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتے ہیں. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک اس کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. سچ ہے نا, جھوٹے سہارے. مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اب ان باتوں کو سنتے وقت آپ سوچیں کہ تم سے مراد میں ہوں. اپنے آپ پہ لیجئے اور اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں, کیا اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی پاؤ؟ جواب دیں. محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے باہر سمجھتی ہوں؟ کیا مجھے اس سے خوف نہیں آتا کہ گناہ کروں اور زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں؟ کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, ٹائٹینک کی طرح, اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. جن کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ, نام اعمال یا لیڈرز. اس وقت جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, اللہ ہمیں ان میں کرنا, وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. کون سا اندھا پن ہے یہ؟ بلائنڈنس؟ نہیں, یہ بلائنڈلی فالو کرنا اپنے معاشرے کو, اپنے کلچر کو. اے نبی, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں. سچ ہے نا, پھر آ گیا فتنہ. آج بھی لگتا ہے لوگ, ہمارا معاشرہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہٹ جائیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. سچ ہے نا, پیچھے زندگی میں پلٹ کے دیکھیں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ اس قرآن کے سفر کو برقرار نہ رکھ سکتے ہوں گے. کوئی فتنہ, کوئی دعوت, کوئی افطاری, کوئی ترغیب, کوئی ترہیب. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں 15 پاروں تک جمایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی جمائے اور زندگی بھر جمائے رکھے. لیکن اگر تم ایسا کرتے, یعنی اگر چھوڑ دیتے ان کے کہنے پہ, تو کیا ہوتا؟ ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے, کچھ فائدہ نہ ملتا اس کو چھوڑ کر. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں گے. ہر دور کا فتنہ, حق کہنے والوں کو ہٹا دو, نکالو ان کو یہاں سے. یہ کیا کرنے لگ گئے؟ کہا جی, نکالنے والے خود کہاں ٹھہریں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا اور جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا, اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی تم نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو, کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. پڑھتے ہیں, محاسبہ کر لیتے ہیں, کیا فجر کے بعد تھوڑا سا ہی صحیح قرآن پڑھتی ہوں؟ چند لائنیں, عادت بنا لیں, آج سے نیت کرتے ہیں, زیادہ نہیں تھوڑا سا. فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے, فجر پہ فرشتے آتے ہیں اور عصر پہ آتے ہیں, اور اس وقت اگر آپ نماز اور قرآن میں مشغول ہیں تو وہ آپ کی گواہی دیں گے کہ اللہ, جب گئے تھے تب بھی یہی کر رہے تھے اور آئے ہیں تو تب بھی یہ کر رہے ہیں. پہلے یہ رسم تھی, या रिवाज था या आदत थी, नानियाँ दादियाँ पढ़ती थीं। अब वो चली गईं, ना वो रहीं, और आज हमारे घरों से सुबह उठते ही कुरान की आवाज़ें भी नहीं आती। कुछ और ही आवाज़ें आने लगीं, कभी ख़बरों के नाम पे, कभी बच्चों के कार्टून्स के नाम पे। एक वक्त था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, पहचान ही ये थी। हिंदू के घर से सुबह उठते ही भजन की आवाज़ आती थी, क्योंकि उनकी इबादत ही गा बजा के होती है, लेकिन मुसलमानों के घरों से कुरान की आवाज़ें आती थी। आज हम सब जहाँ नॉन मुस्लिम्स के साथ मिलके रहते हैं, अपने घरों से उठने वाली आवाज़ों को चेक करें, पूछ लें अपने नेबर्स को कि सुबह हमारे घर का कुरान तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करता। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, और बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद पर फ़ाइज कर दे। तहज्जुद की आदत। और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहाँ भी ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक्तदार को मेरा मददगार बना दे। आमीन तो कह दे। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकें वाखरिजनी मुखरज सिदकें वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एक बच्ची जब मैके को छोड़ के ससुराल जाती है तो वो मरहला भी बड़ा अहम होता है। कोई वजीफ़ा नहीं, लेकिन सिर्फ अपने अमल के लिए ये बात रख लें कि जहाँ से भी निकलें, जहाँ से भी आएँ, ये दुआ किया करें कि अल्लाह जब आऊँ तो खैर से आऊँ, सच छोड़ूँ, झूठ ना लोगों को दूँ, ज़िंदगी सच्ची हो, सच्ची खुशियाँ पाऊँ, और जहाँ से जाऊँ तो अपने लिए अच्छा सदका जारिया छोड़ूँ, अपना अच्छा नाम छोड़ के जाऊँ। वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। हक के सामने कोई फितना नहीं रहता। जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लम बड़ी आजजी के साथ मक्का में दाखिल हुए। आपकी दाढ़ी ऊँटनी के कुजावे के साथ लगी हुई थी, इतने हम्बल थे। कोई अकड़ के और तकब्बुर से नहीं कहा कि जश्न मना रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आप बैतुल्लाह के अंदर गए तो आपने वहाँ रखे हुए बुत तोड़े जो कुफ़ार ने बना रखे थे, और उस वक्त आपकी ज़ुबान पर यही बात थी कि जाल हक वज़हक़ल बातिल। हम अपने दिलों को पूछें, एक तो काबा वहाँ है ना, और एक क़िबला काबा अपने अंदर भी होता है जिसके गिर्द सारी ज़िंदगी घूमती है। क्या मेरी ज़िंदगी में हक आ रहा है और बातिल जा रहा है? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ। हम इस कुरान के सिलसिले तंजील में जो कुछ नाजिल कर रहे हैं वो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज़ में इजाफा नहीं करता। अल्लाह अकबर। एक ही कुरान है, कुछ को नरम करता है, तोड़ के रख देता है, और कुछ और सख्त हो जाते हैं। फ़र्क किस में? कुरान में, बताने वाले में, नहीं दिलों में। जो कुरान को दिल पे लेके सुनता है उसकी आंखें बहती हैं, और जो कुरान को सिर्फ कानों से टकराता है उसका दिल घबराता है कि जल्दी जान छूटे। किताब भी वैसे अजीब है, सिर्फ उसको अपना देती है जो अपना सब कुछ दे। बड़ा प्यारा है, किसी का कॉल था कि इल्म तुम्हें अपना कुछ भी नहीं देता जब तक तुम अपना सब कुछ उसको ना दे दो। कम्प्लीटली फोकस, डिवोशन, ये चाहता है अल्लाह ताला अपने बारे में। और हम हाथ में सेलफोन पकड़ के बातें करते हुए दिल में दिमाग में कुछ, एक कदम इधर एक दुनिया की तरफ भागते दौड़ते हैं, तो बस फिर उतना ही मिलता है जितना ले सकते हैं। इंसान का हाल ये है। अब सोचें हम अपने आप को, क्योंकि हम सब भी इंसान हैं। जब हम इसको नेमत अता करते हैं तो वो बहुत अकड़ता है और पीठ मोड़ लेता है। ये कब होता है? जब हमारे घर कोई खुशी का मौका आ जाता है, कोई कहे कि आइए कर ले नेकी का काम, नहीं हमारे तो खुशी का दिन है। और बास तो फिर कई कई दिन नमाज़ें ही नहीं पढ़ते कि शादी में मसरूफ़ थे। और जब ज़रा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। वयसलूनका अनिर रूह, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कहो, ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम इसका कम ही इल्म रखते हो। और ऐ नबी, अगर हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने तुमको वही के ज़रिए से अता किया, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न पाओगे। जो इसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है, हकीकत यह है कि इसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो, अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे, चाहे सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। आप कुरान को सुनते हुए ये महसूस करते कि ये अल्लाह का कलाम है? बिल्कुल महसूस होता है, मुझे पढ़ते हुए महसूस हो रहा होता है। ख़ास तौर पर जब अरबी कायद पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दिल के अंदर उतरती है ना। सारे लोग मिल जाएं, इसके मुकाबले में सारे उलूम ले आओ दुनिया के, फिक्शन ले आओ, नॉलेज ले आओ, लेकिन ये किताब उसके ऊपर डोमिनेंट है। जितनी कसरत से ये किताब पढ़ी जाती है, जितना फोकस होकर ये पढ़ी जाती है, दुनिया की कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती। ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है जगह जहाँ पूरे साल कुरान पाक को उन्होंने लगाए रखा कि कुरान पाक सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई किताब है। बस दुआ करें कि ये हमारे दिलों में उतर जाए। वलकद सर्रफना लिन्नास फी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल फअबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर अक्सर लोग इनकार पर ही जमे रहे। है ना अफसोस की बात, किस्मत की बात है। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हर एक को इस किताब की तरफ आने भी नहीं देते, खाली दिल लेकर आते हैं, सारी चीज़ों से अपने दिल को पाक करते हैं ना, फिर ये किताब दिल के अंदर आती है। और उन्होंने कहा कि हम तेरी बात ना मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए ज़मीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे। है ना समझी, इतना प्यारा कलाम नाजिल हो रहा था और कहते थे मौजज़े दिखाओ। ये आखिरी दौर की आयतें हैं, अब मक्का का आखिरी दौर, मौजज़े मौजज़े मौजज़े। और इसका अंदाज़ सूरत अलअनाम से बहुत मिलता है। सुबह में आजकल हम पढ़ रहे हैं, कई आयतों से धोखा लगता है कि ये वही आयतें तो नहीं हैं। जिसको ये कुरान का मौजज़ा नहीं दिखता, अब देखिए कि पिछले अंबिया कराम के मौजज़े वक्ती थे। हज़रत सालेह के इस दौर में ऊँटनी आई फिर ख़त्म हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा सांप बन जाता था, ख़त्म हो गया। यद बैज़ा सुर्ख सफ़ेद हो जाता था, बगल में हाथ डालते थे बिल्कुल क्रिस्टल का होता, बाद में डालते, ख़त्म। आज ना मौजज़ा है ना कुछ। अल्लाह के नबी का मौजज़ा ये कुरान है, ये क़यामत तक रहेगा। और ये मौजज़ा उसी को फ़ायदा देता है जो इसको वाकई हिदायत की नीयत से लेता है। तो कहते थे ज़मीन से चश्मे निकाल दो, है ना समझी की बात है। या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू इसमें नहरें रवां कर दे, या तो आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे। है ना समझी, जब बंदा तासुब का शिकार होता है कहता है मर भी जाएंगे मार भी देंगे, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, वही कुछ कैफियत है। जैसा कि तेरा दावा है, या खुदा और फरिश्तों को रूबरू हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए। ऐसे लगता है जैसे मदारी का तमाशा करना चाहते हैं लोग। या तो आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन ना करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ए नबी इनसे कहो, पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ? लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो इस पर ईमान लाने से इनको किसी चीज़ ने ना रोका मगर इनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेजा। कितने बदबخت हैं, हिदायत से दूर हो गए, सिर्फ अल्लाह के नबी की ज़ात में खो गए। इनसे कहो, अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को इनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ऐ नबी इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवाय से लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर ना पाएगा। इन लोगों को हम क़्यामत के रोज़ अंधे मुँह उठाएंगे। सोचिए, وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا। ये कौन लोग हैं जो हिदायत से अंधे बहरे गूंगे बने रहे। इन लोगों को हम क़्यामत के रोज़ ऊंधे मुँह खींच लाएंगे, अंधे गूंगे और बहरे। इनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी हम इसे और भड़का देंगे। सोचिए, है ना कंटिन्यूस अज़ाब, थोड़ी हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, फिर और तेज़ करेंगे। ये बदला है इनकी इस हरकत का कि उन्होंने हमारी आयात का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या इनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया वो इन जैसों को पैदा करने की ज़रूर कुदरत रखता है? उसने इनके हशर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर जालिमों को इसरार है कि वो इसका इनकार ही करेंगे। ऐ नबी, इनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की रहमत के ख़जाने तुम्हारे कब्ज़े में होते तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से ज़रूर इनको रोक लेते। वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाक़ हुआ, और ख़ास तौर पे अगर औरतों के हाथ में होते। सोचे ज़रा, अगर बारिश की इंचार्ज कोई औरत होती तो कहती, ये तो ख़त्म हो जाएगी, मैं तो नहीं बरसने दूँगी। फसलों के ख़जाने, औलादों के ख़जाने, ये तो शुक्र है अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं, फिर भी लोग जाके बुज़ुर्गों से लेना चाहते हैं। हमने मूसा को 9 निशानियाँ अता की जो सरीख तौर पर दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा इनके हाँ आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूँ कि तू ज़रूर एक सहर ज़दा आदमी है। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज़ निशानियाँ ज़मीन और आसमान के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि फ़िरौन तो ज़रूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फ़िरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंके। फ़िरौन अपने दौर का फितना था, आजमाइश था, बड़ी ताकत थी जो उस दौर के मुसलमानों को दबाना चाहती थी, मगर हमने इसको और इसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया। और इसके बाद बनी इसराइल से कहा, अब तुम ज़मीन में बसो, फिर जब आखरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सब को एक साथ ला खड़ा करेंगे। वबिलहक़ अन्ज़लनाहु वबिलहक़ नज़ल, इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ। और ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले इसको बशारत दे दो और जो ना माने इसको आगाह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौके मौके से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है इन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इतना असर होता था उनके ऊपर कुरान पढ़ने का, और पुकार उठते हैं, पाक है मेरा रब, इसका वादा तो पूरा होना ही था, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं। इसे सुनकर इनका खुशू बढ़ जाता है। सवाल करें खुद से, क्या कुरान पाक पढ़ते हुए मुझे भी, मेरे ऊपर भी खुशू आता है? अल्लाह की खशियत, यह सजदा है। सजदे तिलावत फ़र्ज तो नहीं है लेकिन करने का अजर है। इवन जिस हाल में भी हैं वहीं झुक जाया जा सकता है, लेकिन अगर बावजू हो के क़िबला रुख मुकर करके सजदा किया जाए तो भी ठीक है, अजर भी है इसमें, और बंदा आजजी भी महसूस करता है। और सिर्फ सर का सजदा नहीं करना, अक्ल का भी सजदा करना है, झुकाना है अपने आप को कि मैं छोटी हूँ और मेरा रब बड़ा है। जब सिर्फ सर सजदे करता है ना तो नमाज के बाद भी बंदा अकड़ा अकड़ा फिरता है अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में, और अल्लाह के बंदों से भी उखड़ा रहता है। लेकिन जब सर के साथ अक्ल भी सजदा करती है तो हर काम करते हुए पूछता है कि अल्लाह तू बता मैं क्या करूँ। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो इसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज़ से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। और कहो, तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में इसका शरीक है, और ना वो आजिज है कि कोई इसका पुश्तबान यानी मददगार हो। और इसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ایک ہی آیت میں الحمدللہ بھی ہے اور اللہ اکبر بھی ہے۔ اس کو آیت عزت بھی کہتے ہیں، عزت والی آیتیں اس میں، اور اگلی سورت میں الحمد سے بات شروع ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز ہوا سبحان الذی اسری سے، اور اختتام ہو رہا الحمدللہ کے بعد کبرہ تکبیرا۔ یہی تین تسبیحات ہیں نا جو عموماً پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورت میں جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے, ان سارے فتنوں سے محفوظ رکھے جس میں بنی اسرائیل شکار ہوئے, اور آج کے دور میں ہمارے سامنے جو فتنے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں.